Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Narayana Narayana Narayana. ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाख एषो अश्वत्थ सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः स्त्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन। कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का पहला श्लोक, कठोपनिषद के इस वल्ली में संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया है। जहां हम जीते हैं, जहां हम अनेकों प्रकार के कष्ट, अनेकों प्रकार की भावनाओं का अनुभव करते हैं, वहां से हमारे मन को अलग करने के लिए और उसका जो मूल आत्मतत्व ब्रह्म तत्व है उसको दिखाने के लिए एक रूपक किया है। वृक्ष का संसार एक वृक्ष है और जो भी वृक्ष होता है वो बीज के बिना नहीं होता है। बीज जब अंकुरित होता है तो उसको भूमि चाहिए। तो सारी चीजें यहां भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में विस्तार से बताए हैं। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे कि संसार एक वृक्ष है तो अंकुर होगा, तो वो जो अंकुर हैं वो हिरण्यगर्भ हैं, वो पहला जीव, और इस हिरण्यगर्भ से फिर सारी ये सृष्टि बनी। श्रीमद् भागवत में इसी के विषय में कहा, एतन नानावतारा नाम निधानम बीजमभ्यम, यही सहस्र शीर्खा पुरुखः, सहस्राक्षः सहस्रपात, जो श्रुति प्रतिपादन करती है वही विष्णु है, वही व्यापक तत्व, वही हिरण्यगर्भ, और वो संपूर्ण अवतारों का मूल है। वहीं से भी सारी ये दुनिया बनी। दूसरे रूप में अंकुर धीरे धीरे शाखा में बदल जाता है। अंकुर कोई अंकुर नहीं रहता। आपने देखा होगा कोई छोटा सा अंकुर है, वो धीरे धीरे उसकी शाखाएं निकल आती हैं, फिर दिखने भी लगती हैं डालियां। तो यहां डालियों के स्थान में जीवात्माओं का वर्णन है। वो दिखना शुरू हो जाते हैं। अंकुर में डालियां दिखती नहीं है, लेकिन जैसी जैसी डालियां प्रकट होने लगती हैं, फैलने लगती हैं, मालूम होने लगता है कि ये डालियां हैं, ये शाखाएं हैं। अंकुर एक है लेकिन शाखाएं अनंत हैं। ऐसे मूल जो तत्व हैं, हिरण्यगर्भ एक हैं, लेकिन जीवात्मा अलग है, अनेक हैं। ये बहुत सारे जो दिखाई दे रहे हैं हम सभी जीवात्मा के रूप, सूक्ष्म शरीर, अधिष्ठान चैतन्य, और सूक्ष्म शरीर में अधिष्ठान चैतन्य का प्रतिबिंब, इन तीनों के समूह को जीव बोलते हैं। और ये बहुत सारे हैं, अनंत हैं, जीव अनंत हैं। और जब शाखाएं होगी तो पत्ते भी होंगे, क्योंकि बिना पत्ते का वृक्ष तो होता ही नहीं है, किसी न किसी रूप में उसके पत्ते होते हैं। तो उसके जो पत्ते, उसका वर्णन किया है बड़ा सुंदर, ये श्रुति स्मृति न्याय वेद शास्त्र हैं, यही संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। और ये जो उपमाएं दी हैं बहुत सारगर्भित उपमाएं हैं। पत्ते वृक्ष का जीवन हुआ करते हैं, पत्तों के द्वारा वृक्ष ऑक्सीजन लेते हैं और वो संपूर्ण वृक्ष तक पहुंचाते हैं। जैसे हम लोग नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे वृक्ष पत्तों से ऑक्सीजन लेते हैं। ये जीवन तत्व है। जैसे हमारे जीवन में प्राणों के बिना होना संभव नहीं है, आप प्राणायाम कितना देर तक कर सकते हैं? हम रात भर आंख बंद करके बैठे रहे, दिन भर चाहे तो बैठे रहे, कान बंद कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथ और पैर बांध करके बैठे रहे घंटों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिना बोले मुख बंद करके हम घंटों बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नाक बंद करके यदि बैठना चाहे तो, इसलिए आज तक हमने सारी चीजें बंद कर दी, लेकिन एक चीज छोड़ के। आदमी बोलता भी है कि हमने अब मुख बंद कर दिया है, अब हमने कान बंद कर दिए, अब हम नहीं सुनते हैं। लेकिन आज तक अभी तक कभी किसी से आपने सुना कि हमने नाक बंद कर दी? संभव ही नहीं है। क्षण क्षण प्रतिक्षण जीवन तत्व जो इस वायु से मिलता है ऑक्सीजन के रूप में, वो हमारे जीवन का सत्व है। इसलिए प्राण जिसको बोलते हैं, जीव प्राण धारणे धातु से ये जीव शब्द बनता है, जीवन शब्द बनता है प्राण धारणे अर्थ के धातु से। और जीव का ही अर्थ होता है प्राणों को धारण करना। जीव का अर्थ ये नहीं होता है कि आप किसी को देख रहे हैं तो जीवन है, ऐसा नहीं है। आप कुछ सुन रहे हैं तो आपके पास जीवन है, आप चल रहे हैं फिर रहे हैं तो जीवन है, और चल फिर नहीं रहे तो जीवन नहीं, ऐसा नहीं। आप देख रहे हैं तो जीवन है, और नहीं देख रहे तो जीवन है, ऐसा नहीं है। आप सुन रहे हैं तो जीवन है, और नहीं सुन रहे तो जीवन नहीं, ऐसा नहीं है। आप भोजन कर रहे हैं तो जीवन है, और भोजन नहीं कर रहे हैं तो जीवन है, ऐसा नहीं है। इसलिए वास्तविक जो जीवन का अर्थ है वो देखने छूने बोलने चलने फिरने में नहीं है। वास्तविक जीवन है प्राण धारण। यदि आप प्राणों को धारण कर रहे हैं, श्वास आपकी चल रही है, तो इसका मतलब आपका जीवन है। और श्वासोच्छ्वास यदि आपकी नहीं चल रही है, इसका मतलब जीवन नहीं है। इसे सबसे पहले आदमी देख लेता है नाक को हाथ लगा के कि श्वासें चल रही कि नहीं। ये जीव प्राण धारण है। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्राण तत्व, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसी के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। हमारा जोर तो खाने पर है, हमारा जोर तो देखने पर है, हमारा जोर तो केवल सुनने पर छूने पर, यहां तक कि सूंघने पर भी है। बहुत बड़े बड़े आयोजन करके हम सुगंध को सुनना चाहते हैं, सूंघना चाहते हैं। लेकिन जो बहुत मूल्यवान चीज है प्राण तत्व, उस प्राण तत्व को ग्रहण करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। और करने की जरूरत है, सबसे मूल्यवान। इसलिए आपके धर्म में प्राणायाम का बहुत महत्व है, लेकिन हमने प्राणायाम को कर्मकांड मान लिया। कर्मकांड आपने कभी ध्यान दिया होगा, पूजा वूजा में बैठे रहते हैं ना, तो अथ प्राणायाम तो करते हैं कि नहीं आप? आप करते नहीं है, यूं बस हो गया। प्राणायाम के नाम से आदमी नाक में हाथ लगाता है, आप कुछ नहीं करता है। वहां अथ प्राणायाम माने आप विधिवत प्राणायाम कीजिए, दो मिनट लगाइए, थोड़ा शांत से बैठे रहिए, आप पूरा प्राणायाम कीजिए। लेकिन आदमी प्राणायाम नहीं करता है, वो जो पुष्पा भावे तंडुलम समर्पयामी ऐसा बोलते हैं कि नहीं? भाई फूल नहीं है तो आप भगवान को क्या करोगे? चावल चढ़ा दोगे। और वस्त्रा भावे वो भी तंडुलम समर्पयामी, तो आप सबके अभाव में तंडुल को समर्पित कर देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप प्राणायाम तो कर सकते हैं ना। लेकिन वहां पर भी आदमी प्राणायाम नहीं कर पाता, वो नाक को छू के आगे बढ़ जाता है, वो औपचारिकता, वो एक कर्मकांड का अंग समझकर उसको निपटा देता है, लेकिन वो निपटाने की चीज नहीं है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। व्यास जी महाराज ने कहा कि आप सुखी होना चाहते हैं, आप शांत समाहित होना चाहते हैं, तो आपको दो काम करने चाहिए। बोले बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल दो काम करने की जरूरत है। प्राणायाम परस्य च गीता अध्ययन शीलस्य, आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो और प्राणायाम करो, मतलब दो काम करो आप, फिर नए वसंति ही पापानी, आपके जीवन में कोई पाप नहीं होंगे, और जो हुए होंगे वो पूर्व जन्म कृतानि च नश्यन्ति, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आपका प्राणायाम करना कर्मकांड ना हो, वो वास्तविक हो। आप सचमुच बैठ करके प्राणायाम पढ़ो, आपके सारे शास्त्रों में प्राणायाम का बहुत महत्व है, क्योंकि प्राणायाम वास्तविक जीवन है। आप भोजन के बिना जी सकते हैं, हाँ हाँ, बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए तो 9 दिन तक बिना खाए पिए नींबू पानी के ऊपर रहे, 9 दिन तक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैन संप्रदाय में 40-40 दिन तक पानी के ऊपर रहते हैं, उसके बिना भी जीवन संभव है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में जिसका संकलन करते हैं अनावश्यक रूप में, उनके बिना भी जीवन संभव है, लेकिन प्राणायाम के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्र ने कहा प्राणायाम करो। जब आप चलते हैं ना, तेजी से आप चलते हैं तो प्राणायाम होता है, अभी श्वास चालू हो जाती है। प्राणायाम का अर्थ केवल नाक दबाने का अर्थ नहीं है, आप जब दौड़ लगाते हैं तो प्राणायाम हो जाता है, आप जब कोई चीज उठाते हैं तो आपका प्राणायाम हो जाता है, आप श्रम करते हैं तो प्राणायाम हो जाता है। इसलिए जो बहुत श्रम करने वाले लोगों के लिए प्राणायाम करने की जरूरत नहीं रह जाती है, लेकिन जो हम लोग श्रम नहीं करते हमारे लिए प्राणायाम की बहुत जरूरत है। ये अक्षय ऊर्जा है प्राण, इसलिए प्राणोपासना हमारे धर्म का बहुत बड़ा ये साधना का अंग है, प्राणोपासना। और गीता अध्ययन शीलस्य, गीता का अध्ययन करो। प्राण तत्व ये हमारे जीवन का अमूल्य महत्वपूर्ण भाग, ऐसे संसार रूपी वृक्ष का प्राण तत्व किसमें निहित है? बोले वेद शास्त्र, ये पल्लव, ये पत्ते हैं इसके, क्योंकि हमारे संपूर्ण जीवन का जो आधार तत्व है वो विधि और निषेध में। आपने सुना होगा कि आप पुण्य करते हैं तो ऊपर जाते हैं, पाप करते हैं तो नीचे जाते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, और ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। देवता लोग बन जाते हैं जो पुण्यात्मा हुआ करते हैं, और जो रजोगुणी है वो बीच में रह जाते हैं, तमोगुणी है वो पापात्मा, वो निम्न योनियों में चले जाते हैं। ये हमारा संपूर्ण जो जीवन है वो पाप और पुण्य इन दोनों का सम्मिलित रूप है। इसलिए पंचदशी का एक बहुत सुंदर श्लोक है, पंची करोति भगवान प्रत्येकम यदाधिकम। इस सृष्टि में, दुनिया में जो भी कुछ बनता है वो जीवात्माओं के कर्मों के कारण, ये जो शरीर हमें मिला वो कर्मों के कारण है। इसको बोलते हैं ना पूर्व, बोलते हैं पूर्व पूर्व, इस शरीर को पूर्व बोला है। केवल मनुष्य के शरीर को ही पूर्व बोला है, पशु के शरीर को पूर्व नहीं बोला है, जान देना। वो गांव है, वो गांव है, वो झोपड़पट्टी है, होते ना कि झोपड़पट्टी भी है, गांव है, थोड़ा टाउन है, ओ नगर, ओ महानगर है। अब जब बम्बई का नाम लोग सुनते हैं, बम्बई हो बम्बई, आप किसी को हम बोलते हैं भैया कहां जाए, बम्बई, और बम्बई मतलब उनको ऐसा लगता है कि किसी बहुत बड़े लोकांतर में हम जा रहे हैं, ब्रह्मलोक में। और लोगों को बोले कहां, प्रेमपुरी में जा रहे हैं, तो अब तो बातें ही खत्म हो गई। फिर अब अंतिम बोले ये तो अंतिम हो गया, ये तो भारतवर्ष का अंतिम तत्व हो गया, प्रेमपुरी में जा। मेरे को किसी ने बोला कि अरे आप प्रेमपुरी में बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बोले ऐसा इंदौर में नहीं करते। हमको दो दिन पहले किसी ने मैसेज भेजा, अरे बोले प्रेमपुरी के प्रवचन जब हम सुनते हैं तो बोले बहुत गजब के होते हैं, और जब इधर आप बोलते हैं तो बोले बोल नहीं पाते, पता नहीं क्या है। हमने कहा भैया वहां के श्रोता और वहां का जो मंच है वो अद्भुत है। तो पूर्व बोलते हैं आप, उसका कारण है ये महानगर, ये पूर्व पूरयति इति पूरा, ये ऐसे नहीं बोला जाता है। पूर्व पूर्व माने नगर, बोलते नगर अग्रे नयति इति, जो आपको जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं जो पूरी कर दे वही पूर्ण है। आप किसी झोपड़पट्टी को पूर्ण नहीं बोल सकते हो, बोले ये तो पूर्ण है, नहीं वो तो झोपड़पट्टी है, वहां तो पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है, आपके आगे बढ़ने के सारे मार्ग अवरुद्ध हैं। और पूर्व वो है जहां से आप आगे जा सकते हैं। आदमी बोलता है भैया अब हमको आगे बढ़ना है, तो चलो पूर्व नगर शहर चलो, आगे बढ़ने के लिए सारी आवश्यकताएं नगर पूरी करता है, शहर पूरी करता है, आप आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ये जो शरीर है ना, ये पूर्व इसीलिए हैं क्योंकि यहां से आगे बढ़ने के सारे मार्ग खुले हुए हैं। आप कहां जाना चाहते हैं, महात्मा लोग बोलते हैं ना कि ये जंक्शन है, जंक्शन का मतलब आपको टिकट, आप जहां जाना चाहते हैं वहां का टिकट यहां मिलता है। आप हरिद्वार जाना चाहते हैं यहां से टिकट मिलेगा, आप वृंदावन जाना चाहते हैं तो आपको यहां से टिकट, रामेश्वरम यहां से टिकट मिलेगा, ये जंक्शन है। ऐसे आपको कहां जाना है, सुख में बोले इसी शरीर से, दुख में इसी शरीर से। आप सुखी होना चाहते कि दुखी होना चाहते, हम अपने जीवन के 99% दुख अपने इच्छा से निर्मित करते हैं, 99%, 1% जानबूझ के छोड़ रहा हूं मैं, 100% हम हमारे सुख दुख के निर्माता है, हम अपने भाग्य के निर्माता है। हम जो भी कुछ करते हैं वो करना हमारे जीवन में बहुत कुछ निर्मित करता है। अभी आप यहां बैठे हैं, बैठना भी बहुत कुछ निर्मित करता है। आप चल रहे हैं, आपका चलना भी बहुत कुछ निर्मित करता है। आप सो रहे हैं, सोना एक प्रोडक्शन है, आपका नहीं करना भी एक करना है। आप सो रहे हैं तो कुछ बना रहे हैं कि आप नहीं बना रहे हैं? आप डॉक्टर को पूछना, वो बोलेगा आप सो, आप अच्छी प्रकार से सो। बच्चों को ज्यादा सोने के लिए डॉक्टर बोलता है, जितना सोएगा उतना विकास होगा, सोने में ज्यादा विकास है। आप सोते हैं तो आपकी शरीर की बहुत सारी जो चीजें हैं वो ठीक हो जाती हैं। आपका घाव हो तो आप सोते समय घाव जल्दी भरता है, आप सो रहे हैं तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। ऐसा है समझ लीजिए ना कि कोई चीज ठीक करना चाहते हैं तो आप गैरेज में गाड़ी छोड़ देते हैं और अब चले जाते हैं, और वो अकेला आदमी वो ठीक कर देता है। ऐसे आप सो जाते हैं तो प्रकृति शांति में आपके शरीर के सारे पुर्जे वो सब ठीक कर देती है। आपको जल्दी स्वस्थ होना है तो सो जाओ। आपको बहुत ज्यादा मानसिक कष्ट हैं, वेदनाएं हैं, और आपको जल्दी ठीक होना है तो क्या करो, सो जाओ, सो जाओ। इसलिए डॉक्टर, आप सो नहीं पाते, डॉक्टर जबरदस्ती आपको सोने की दवा देता है, भैया सोला दो इसको, क्योंकि अभी रिपेयरिंग करना है, इस शरीर की रिपेयरिंग करना है, माइंड की रिपेयरिंग करना है, बॉडी की रिपेयरिंग करना है, तो आपको डॉक्टर बोल दवा दे देता है, सोला दो इसको। तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप सो रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब आप सोते हैं तो भी बहुत कुछ करते हैं। अभी आप बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, आप बैठे हैं तो भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं। हम करते हैं तो भी करते हैं, और हम नहीं करते हैं तो भी बहुत कुछ करते हैं, और वो हमारा करना अगले क्षण में, जो हमारे पास शरीर है, हमारे पास मन है, उसमें पहुंच जाता है। आप इस क्षण में 8:01 में जो आप करते हैं वही आपके 8:02 में होता है, उपलब्धि है, या हर क्षण उपलब्धि है, और वो उपलब्धि अगले क्षण में पहुंच जाती है। आपका जीवन बनता जाता है, आपकी हर क्रियाएं आपके जीवन का निर्माण करती हैं। इसलिए हर क्षण हमें ऐसा जीना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए जो हमारा अगला क्षण सुखद हो। हमें पहले क्षण में ऐसा जीना चाहिए जो अगला क्षण सुखद, हम अगले क्षण को तो सुखद बनाना चाहते हैं, लेकिन जो आज का जो क्षण है उसको जीना नहीं चाहते। इसलिए चीजें बनती हैं, वर्तमान में हम बनाते हैं, वही फ्यूचर बनता है, वही हमारा भविष्य बनता है। ये तो सूत्र है जिसको आप पाप पुण्य बोलते हैं, शास्त्र में बताता है ये करो, ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे बैठना चाहिए। शास्त्र ने कहा कि भैया सीधा बैठना चाहिए, क्यों? बोले रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आपको सोना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने कहा आपको बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, क्यों? आप टेढ़ा मेढ़ा बैठोगे तो रीढ़ की हड्डी तो टेढ़ी मेढ़ी होगी, और लंबे समय तक आप टेढ़ा मेढ़ा बैठोगे तो आप फिर बोलोगे कि भैया वो खसक गई। बोले ना रीढ़ की हड्डी बोली, मन का खसक गया, क्यों खसका? वो आज नहीं खसका है, बहुत लंबे समय तक आपने वैसे काम किया है। अब सीधा बैठो, सो तो सीधा, और लोग बड़े बड़े वो सिरहाने ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े सिरहाने लेते हैं, बड़े बड़े सिरहाने, सो। अब एक दिन डॉक्टर बोलेगा कि वो गैप हो गया, सोए टेढ़ा मेढ़ा सोया भैया, सीधा सो, बहुत कम मात्रा में आप सिरहाना लो। इसलिए महात्मा लोग मधुबाबू हाथ का सिरहाना लेते, हमने ऐसे महात्मा, अरे बोले नहीं सिरहाना, अरे भैया अपना हाथ लगाया और वो सो गए। आप करते हैं, आपकी हर क्रिया आपके शरीर को, आपके मन को, आपके बुद्धि को प्रभावित करती है, वो फ्यूचर बनता है। आपका सोना, आप ये मत सोचना कि आपके जीवन को प्रभावित केवल विधि और निषेधात्मक कर्म ही करता है, नहीं, विधि और निषेधात्मक कर्म भी हमारे जीवन का निर्माण करता है, वैसे हमारी प्रत्येक क्रियाएं भी हमारे जीवन का निर्माण करती हैं, जिसमें कोई विधि और विधान नहीं है। आप यूं बैठे हैं, आप ढंग से बैठे हैं तो वो आपके जीवन का निर्माण करेगी, वो बैठने की क्रिया, और आप टेढ़ा मेढ़ा बैठेंगे तो वो भी आपके जीवन का निर्माण करेगी। जब बिगड़ जाता है तो आदमी देखता है कि हमने ये बिगड़ने वाला काम तो किया नहीं है, ये हुआ कैसे? आदमी सोचता है हमने तो ऐसा कुछ खाया नहीं, गला कैसे खराब हुआ? आप करीब करीब 99% बीमारी के समय यही सोचते हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर हम बीमार कैसे पड़े? हमने तो गलत खाया नहीं, हमारा गला कैसे खराब हुआ? सोचते कि नहीं? लेकिन आपको मालूम है, आप 10 दिन पहले खाए होंगे, वो इन्फेक्शन आपके पेट में पड़ा रहा और जैसे समय उसने देखा और वो बाहर आ गया, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता है कि हमने 10 दिन पहले वो खाया है। लेकिन वो चीज है, आपके अंदर है, वो पड़ी हुई है। और वो जैसे अवसर मिलता है वो सारी चीजें बाहर आ जाती है। इसलिए हमारी प्रत्येक क्रियाएं, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बोलना और बोलने का ढंग भी वो हमारे जीवन का निर्माण करता है। यही तो प्रारब्ध है, जो शास्त्र अनुकूल, शास्त्र प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान हम करते हैं और वो पुण्य बनकर हमारे अगले जीवन का निर्माण करता है। आज जो गलत आचरण करते हैं वो पाप बनकर वो भी अगले जीवन का निर्माण करता है। इसलिए ऑक्सीजन जैसे पत्तों से वृक्ष ऑक्सीजन लेता है और वो संपूर्ण वृक्षों तक पहुंचा देता है, उसका जीवन है, पत्ते वृक्ष का जीवन है। ऐसे हमारे वेद शास्त्र विधि विधान ये संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। ये उपमा बहुत सारगर्भित है। अवाक्षाखः एषु अश्वत्थः सनातन, ये अश्वत्थ और सनातन ये जो संसार रूपी वृक्ष हैं, अश्वत्थ नहीं है। ऐसे अश्वत्थ पीपल के पेड़ को बोलते हैं, ऊर्ध्वमूलो मदशाख। अश्वत्थ, अश्वत्थ माने पीपल के पेड़ का नाम है अश्वत्थ। और ये पीपल के पेड़ का नाम अश्वत्थ है और इसका अर्थ भी बड़ा मजेदार है। अश्वत्थ इसमें 3 शब्द हैं। अ नकारात्मकता है, अ माने नहीं है,